10th of May, year 2004. My address to seniors in Willowdale Jamaat Khana of Toronto, in headquarters Jamaat Khana.
Jali Madad.
Thank you. जो कुछ भी इन्होंने मेरा वखान किया है वो वखान मेरे मौला का। हम लोग इमाम के नौकर हैं सब, लेकिन मैं खुश नसीब हूं कि इमाम ने मुझे अपनी नौकरी में इस उम्र तक रखा, और इंशाल्लाह जब तक जीऊंगा उसकी गुलामी करता रहूंगा। आज मैं आपके सामने अपने जीवन की एक्सपीरियंस में से जो कुछ भी सीखा है उसको मद्देनजर रख के आपके क्या काम आता है वो मैं आपसे बात करता हूं। पहली चीज मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप में से जो 90 इयर्स के ऊपर है वो हाथ ऊंचा करो। वहां दो जने निकले, दो भाइयां थी जिन्होंने हाथ ऊंचा किया, मगर यहां एक भी नहीं कि जो 90 इयर्स के ऊपर है। हमारे मौला की एक आदत है जो कि हाजिर इमाम की नहीं लेकिन बहुत से इमामों से, कि अगर जमात में कहीं भी 100 बरस के ऊपर कोई होवे तो मौला उसको डायमंड की रिंग देता है। 1946 में इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की डायमंड जुबली थी, उसके पहले इमाम थोड़ा मुसाफरी की अफ्रीका में, तो सर जंजीबार में गए, तो जंजीबार में उस वक्त वारस अली दीना कांजी 104 बरस का था। मौला बहुत खुश हुए, मौला ने उसको कहा कि तुम डायमंड जुबली के ऊपर आने की ट्रबल मत करो, मैं तुम्हें डायमंड जुबली का सवाब देता हूं। फिर साहब ने उसको एक डायमंड की रिंग अता की। मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त था काउंट हुसैन नासिर शरीफ दार सलाम में, तो 100 बरस में 2 वीक कमती थे को गुजर गया, 100 पूरे न किए। मैं उसको जोक में कहा करता था, ना बोला काउंट साहब आके रिंग मिले तो मुझे दे दीजिए पांच में, लेकिन उसको रिंग न मिली। ये तो भी सॉरी, एक आदमी सुबह 3 बजे सेल फोन ले आया जमात खाना में टोरंटो लगाने लगा, इसका ये जोक हो गया है। कुछ लोग कहते हैं कि जब हम मर जाएंगे तो साथ ले जाएंगे, शायद कब्र में जीते हो गए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हम इस्राइली हैं, हम मजहब परस्त हैं। सारी दुनिया में जितने भी मजहब हैं इसमें सबसे ज्यादा इबादत बंदगी रूहानियत इस्माइली तरीके में है। हमारी जिंदगी मजहब के साथ इस तरह से लगी हुई है जैसे पानी और मछली का ताल्लुक है। मछली के अंदर भी पानी है, बाहर भी पानी है। ऐसा ही हमारी जिंदगी इस्माइली की यह है कि उसके अंदर भी मजहब है, बाहर भी मजहब है। बहुत बरस पहले मैंने वैंकूवर के अंदर एक लेक्चर दिया था सीनियर्स को, हेल्थ एंड रिलीजन। ہمارا جو مذہب ہے وہ ہمارے, جیسا میں نے ابھی کہا, ہماری زندگی کے ساتھ لگا ہوا ہے. ہم کھاتے ہیں مذہب سے, پھرتے ہیں مذہب سے, چلتے ہیں مذہب سے, سونا اٹھنا بیٹھنا ہماری زندگی کا ہر ایکشن جو ہے وہ مذہب کے ساتھ لگا ہے. ہمارے اماموں نے, ہمارے پیروں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ساس اس ہاتھ سے مارا دیے یہ کانے سرک نہ جائے, ہمارا ہر سانس مولا کی یاد میں آتا ہے. اس لیے ہمارے اوپر یہ فرض ہے, ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنی ہیلتھ کو اچھا کریں. ہیلتھ کو اچھا رکھنے کے لیے ہمارے جو کام کاج ہیں وہ ہمارے مذہب میں آتے ہیں اور ہمیں اس کا ثواب ملتا ہے. باڈی ہماری نہیں, باڈی خدا کی ہے. جیسے کہ قرآن شریف میں بہت جگہ یہ اس کا ذکر ہے, یوں بھی جب بھی کوئی آدمی گزر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم لوگ سب خدا کے لیے ہیں اور واپس خدا کے پاس جمع ہے. تو ہماری یہ جو باڈی ہے یہ خدا کی ملکت ہے, ہمیں اس باڈی کو سنبھالنا چاہیے. ہم کو کہا گیا ہے کہ ہماری جو باڈی ہے وہ خدا کا مندر ہے, خدا کا ٹیمپل ہے, مسجد ہے. من میرا مسلم پیشمس کہتے ہیں, اور مولا اس کا قاضی ہے. کایا ہماری مسیح کا, کایا جو ہے ہماری وہ مسجد ہے. من ہے, مسلح ہے کہ جس کے اوپر بیٹھ کے نماز عبادت ہوتی ہے, اور اللہ میرا قاضی ہے, یہ ہمارا مذہب ہے. اس لیے اگر ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس سے ہماری ہیلتھ خراب ہوتی ہے تو وہ گناہ ہے, کیونکہ ہم نے اس کام سے باڈی کو نقصان پہنچایا. تو ہمیں یہ بہت دھیان رکھنا چاہیے کہ ہماری ہیلتھ اچھی رہے. اور ہیلتھ اچھی رکھنے کے لیے جو اصول ہیں وہ کوئی مشکل نہیں, لیکن حقیقت کیا ہے کہ ہم لوگ دھیان نہیں کرتے. اس میں پہلی چیز ہماری خوراک ہے, فوڈ. اگر ماویتر جو ہیں پیرنٹس اچھی طرح سے ایجوکیٹڈ ہیں اور پرٹیکولرلی ہائیجین کے اندر, پرٹیکولرلی فوڈ تھراپی کے اندر, نیوٹریشنس کے اندر, تو اپنے بچوں کو چھوٹی عمر سے اچھی ہیلتھ کی فاؤنڈیشن بناتے ہیں. لیکن میں اب دیکھ رہا ہوں کہ ہماری جماعت کے اندر ہیلتھ کی بابت میں بہت بے درکاری ہے. چھوٹی عمر سے اگر ہم بچوں کو وہ چیز سکھائیں کہ جو ان کی ہیلتھ کے لیے اچھے ہیں, تو 100 برس تک پہنچنا کوئی مشکل نہیں. مگر ہم یعنی ہندوستان پاکستان کے اوریجنل رہنے والے جمپو دیپ کے اسماعیلی بگڑے ہوئے ہیں. بگڑے ہوئے اس لیے ہیں, بے درکار ہیں. بے درکار اس لیے ہیں کہ ہمیں خبر نہیں, علم نہیں. ہمیں اسٹڈی کرنے چاہیے. ہمارے اماموں نے, ہمارے پیروں نے ہمیں بہت سی چیزیں بتائی. مجھے یاد ہے کہ 1945 میں امام سلطان محمد شاہ دتار نے ایک تعلیقہ بھیجا تھا, اور وہ سارا تعلیقہ فوڈ کے اوپر تھا. امام فرمایا کہ یہ تعلیقہ ہر شکروار کو سارے افریقہ کی جماعتوں میں 7 برس تک پڑھا جائے, اور ایوری فرائیڈے پہلی دعا کے بعد سارے افریقہ میں یہ تعلیقہ پڑھا جاتا تھا, 7 ایئرز تک پڑھا جاتا تھا. اس میں امام نے ہمیں کھانے پینے کے لیے انسٹرکشنز دی تھی, مرچ مسالہ مت کھاؤ. مولا فرمایا نہیں کھاؤ چھاچھ پیو. فرمایا جو کہہ رہے تھے نا اوپر کا فوترا سنبھال پورے کہنے پچھی گاجر کھاؤ, اور سر کہتے ہیں کہ گاجر گوشت نے غرض سارے سے, یعنی اس میں اتنے گن ہیں کہ جتنے گوشت میں ہیں. ویک میں ایک یا دو دفعہ بکرے کی کلیجی کھاؤ, صبح کے وقت کچی پپائی کھاؤ, اور پھر دوپہر کو شام کو پکی ہوئی پپائی کھاؤ. 1948 میں مولا کہ یہ لاسٹ پندرہ منی تھی افریقہ میں, دارالسلام صاحب آئے, جماعت بیٹھی ہوئی تھی, 15-20 ہزار آدمی تھے. عبداللہ ہاشم گانگی اس وقت ایگزیکٹو کاؤنسل کے پریزیڈنٹ تھے, مولا کے پاس بیٹھے تھے. وہ مولا کو پیارا تھا. عبداللہ شکو دان اٹھا, فرمان کرو. مولا کے سامنے مہمانی کا فروٹ پڑا تھا, میری حاضری تھی, میری آنکھ سے دیکھ لی بات ہے. لکڑی لے کے سامنے بنانا کے اوپر ڈی سی کے اوپر لکڑی رکھی, اس کو علی میں ڈی سی کہتے ہیں نا, لیکن انگلش میں ڈی سی کا مطلب ہے بے ہوش ہو جانا. بنانا کے اوپر لکڑی رکھی, عبداللہ جماعت کو بولا دو بنانا روز کھاؤ. اللہ میرے دنی سلام دار فرمائی تھا کہ دو بنانا روز کھاؤ. بولو عبداللہ بولو, بوڑھا کھائے گا جوان ہو جائے گا, جوان کھائے گا بوڑھا نہیں ہوگا. آج سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ دو بنانا روز کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے, اور ہائی بلڈ پریشر کی یہ دوا ہے. لیکن امام نے ساتھ یہ کہا کہ پکے ہوئے بنانا کھاؤ, کچے نہیں. بنانا پک جائے اور باہر کی اسکن پہ کالے کالے ٹپکے آ جائے وہ بنانا اچھا, اس میں بنانا کی خوشبو بھی آتی ہے. بنانا کا ایک اچھا گن یہ ہے کہ وہ آنتڑوں کو صاف رکھتا ہے, قبضیات کو توڑتا ہے. لیکن اس کا مین ایک چیز یہ ہے کہ وہ ہائی پریشر کو ڈاؤن کر کے نارمل رکھتا ہے. دو بنانا روز کھاؤ. ہماری ہیلتھ کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے کہ اپنی ہیلتھ کو اچھا رکھنا, اس میں ڈیفیکلٹیز نہیں ہے. لیکن بات کیا ہے, ہماری دشمن ہے ہمارے بدن کے اندر, وہ ہے جیبھ. جیبھ ہماری دشمن ہے. میں کبھی کہوں کہ آپ میں سے کتنے آدمی ہیں جو مرچے کھاتے ہیں, تو میرا خیال ہے 75-80% لوگ مرچے کھاتے ہیں, اور مرچ ہماری دشمن ہے. لیکن خدا نے ہر شے کے اندر کچھ نہ کچھ گن بھی رکھے ہیں. مرچ میں بھی گن ہے. امام سلطان محمد شاہ کا فرمان کہتا ہوں, مولا فرمایا لیلی مرچ, گرین مرچ کھاؤ, اندر کے بیج پھینک دو. بیج پھینک دو, سیڈز نہیں کھاؤ, باہر کی جو فلش ہے وہ کھاؤ. ایک مرچ انگلی کے سائز کے اگر آدمی کھاوے دوپہر کو تو اس کا بدن گرم رہتا ہے, جوان کو نہیں کھانی چاہیے. 60-65 برس کے بعد ایک لیلی مرچ, گرین مرچ بیج پھینک دو, اور وہ مرچ کھاؤ تو باڈی کے لیے اچھا ہے, سردی کی دوا ہے. لال مرچ کبھی نہیں کھانا. لال مرچ اور لال مرچ کی جو بھوکی ہے پاؤڈر ہے وہ آنکھوں کی دشمن ہے, نظر کم ہو جاتی ہے. اور لال مرچ میں ایک اور نقصان کیا ہے کہ وہ لیور کو نقصان کرتی ہے, اور پھر اس کے سامنے اور یہ ہے کہ کڈنی خراب ہوتے ہیں. ہماری جماعت میں ایسے کچھ ہیں کم نصیب کہ جو ڈائلسس کے اوپر آ جاتے ہیں, किडनी खराब हो जाते हैं, और किडनी अगर बिगड़ गया तो शरीर का सारा सिस्टम खराब हो जाता है, क्योंकि किडनी फिल्टर करते हैं ब्लड के अंदर जो इम्प्योरिटी होती है, किडनी उसको बाहर निकालते हैं। अपनी फूड का बहुत ध्यान रखो, फूड दवा है। जैसा मैंने अभी कहा कि लाल मिर्च से आंखों की नजर खराब होती है, इसी तरह से रिंगना एग प्लांट, उसके जो बीज हैं वो भी नजर को बिगाड़ देते हैं। मैंने सारी जिंदगी रिंगना नहीं खाया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं 85 इयर्स का हूं, ड्राइविंग करता हूं चश्मे के बगैर, पढ़ता भी हूं चश्मे के बगैर, कोई मुश्किल नहीं है। नजर को साफ रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए एक बड़ी सस्ती अच्छी चीज है वरियाली, फेनल सीड्स। खाना खाने के बाद एक चमची जितनी कच्ची वरियाली मुंह में चबाते रहो 15 मिनट तक, फिर पानी से उतार लो, पी जाओ, खा जाओ। आंखों के वजह से बहुत अच्छी है। हमारी आंखें जो हैं, उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, हम लोग आंखों को साफ नहीं करते जितना होना चाहिए। बेहिसाब गाड़ियां चलती हैं शहरों में, गाड़ियों के धुएं में, एग्जॉस्ट में जो चीज निकलती है उससे सारा एटमॉस्फेयर बिगड़ता है। माइक्रोस्कोपिक डस्ट हमारी आंखों में जाती है, लेकिन हर रोज 3-4 दफा जब भी आप वॉशरूम में जाओ तो आंखें ऐसा जोर से खोल कर ठंडे पानी के छींटे दिया करो, तो वो डस्ट जो आती है वो साफ होती है। अगर छोटी उम्र से ये किया जाए तो उसको कभी भी कैटरेक्ट नहीं होवे, और कैटरेक्ट यही है कि जो माइक्रोस्कोपिक डस्ट है वो आस्ते आस्ते जमती जाती है, और बदन के अंदर जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाती है तो आंखों में भी ब्लड तो आता है ना, तो उस वो ब्लड और वो डस्ट मिल के छोटा सा कवर आता है, इसको कैटरेक्ट कहते हैं। आज तो उसका ऑपरेशन हो जाता है, लेकिन हम जो ख्याल करें तो हमें कैटरेक्ट ना होए। मर्चा खाने से भी नुकसान है आंखों का, और ज्यादा तेल वाली चीजों से भी आंखें खराब होती हैं। तेल मत खाओ, तेल घी मार्जरीन। 65 वर्ष 60 वर्ष की उम्र के बाद मैं तो कहता हूं सारी जिंदगी घी तेल की चीजें जवानी में थोड़ी खा ले, लेकिन 50 वर्ष के बाद तली हुई चीजें वीक में एक दफा खा लो, लेकिन हर रोज तेल वाली तली हुई चीजें खाना हमारी बॉडी को नुकसान करता है। कोलेस्ट्रॉल पैदा होती है, फैट होती है, और साथ साथ क्या है कि किस तरीके से ये तेल निकाला गया उसको हमने देखा नहीं फैक्ट्री में। तेल के अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं वो हमारे ब्लड को इम्प्योर करती है, फैट पैदा होती है अननेसेसरीली। घी तेल बंद करो, वीक में एक दिन ओके, मुंह के स्वाद के लिए। लास्ट ईयर नहाने के बाद मैंने अपना वजन किया तो 206 पाउंड था। इस उम्र में यह वजन मेरे लिए अच्छा नहीं था। मैंने नमक सॉल्ट और तेल बंद कर दिया। 3 महीने में कोई भी तकलीफ के बगैर 32 पाउंड्स डाउन हो गया। अब मेरे बॉडी जितनी अच्छी होनी चाहिए ऐसी 160-165 के बीच में चलता है, लेकिन कोई तकलीफ के बगैर 32 पाउंड्स 3 महीने में कम हुए, क्योंकि तेल छोड़ दिया, नमक छोड़ दिया। नमक खाने से हमारी बॉडी के अंदर सेल्स के बीच में पानी रहता है, निमक से पानी रिटेन होता है, और निमक अच्छी चीज नहीं। थोड़ा निमक दो ग्राम की तरह नमक हर रोज कोई बात खराबी नहीं, इससे ज्यादा नमक अच्छा नहीं। और कभी नमक ना भी खावे तो हर फ्रूट के अंदर, हर वेजिटेबल के अंदर, इवन गोश्त के अंदर भी खुदा ने नमक रखा हुआ है जो बॉडी को जरूरी है। नमक सिर्फ जीव का स्वाद है और कुछ नहीं, फीकी चीज लगती है हमको, बाकी नमक अच्छी चीज नहीं है। और किसी वक्त जरूरत से खाना भी पड़े तो फार्मेसी में जाके उसको बोलो मेरे को नो सॉल्ट, डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है नो सॉल्ट, मगर स्वाद आएगा सॉल्ट जैसा। फिर भी मैं ये कहता हूं कि ये भी मत खाओ, सॉल्ट छोड़ दो, 2 ग्राम जितना खा सकते हो इससे बांध लें, इससे बॉडी में बड़ा फर्क पड़ेगा। तो हमारी जो बॉडी है उसके लिए कभी हम खुराक को अच्छी तरह से अरेंज कर लेवे तो हमारे बदन में बीमारियां ना आवे। खुदा ने हर फ्रूट के अंदर, हर वेजिटेबल के अंदर कुछ ना कुछ दवा रखी है। मेरे पास बहुत से लोग दवा के लिए आते हैं। अभी मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं एक क्वालिफाइड, किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला है, लेकिन मुझे अपनी लाइफ में ये मौका मिला है कि मैं स्टडी करता रहूं। ओरिजिनली मेरा मन था कि मैं फिजिशियन बनूं, डॉक्टर, और पहला बरस मेडिकल कॉलेज में भी गुजारा। मेहमानी थी 1938 में हमारी फैमिली की, तो मेरे अब्बा को बोला, पूछते हैं ये क्या करता है, यानी मैं, तो मैंने कहा खुदा रामदीन मेडिसिन, तो मुझे मुंह बनाया, हमारा मिशनरी बनो, मिशनरी बन गया। मगर वो जो शौक था मुझे डॉक्टर बनने का वो चालू रहा, किताबें पढ़ता रहा, आयुर्वेदिक पढ़िए, यूनानी दवा के जो बू अली सीना जिसका उस्ताद था, इस्लामिक तिब पढ़ी, मॉडर्न मेडिसिन भी पढ़ी, लेकिन मैं आखिर में आ गया नेचुरोपैथी के ऊपर, नेचर से काम लिया जाए। हमारे किचन के अंदर जितने मसाले हैं वो सब दवा है। इसमें मैं पहला नाम लेता हूं सिनेमन का। सिनेमन यानी दालचीनी, तज। हालांकि तज का मतलब है छोड़ दे, तजी दियो। ये जो तज है ना, बड़ी अच्छी चीज है। तज का पाउडर घर में रखो, 5 चमची, 1/4 टीस्पून सुबह सीरियल में डाल के या कोई भी तरीके से रोज खाया करो। आयुर्वेदिक में ऐसी कोई दवा नहीं कि जिसमें तज नहीं, 99% तज यूज होती है। तज क्या करती है कि जो हमारे लिवर के साथ लगी हुई पेनक्रियास है, ये पेनक्रियास को एक्टिवेट करती है और पेनक्रियास इंसुलिन पैदा करती है। तज खाने से डायबिटीज नहीं होता, और जिसको हो गया है कभी वो रोज आधी चमची तज खावे तो बरस या 1.5 बरस में उसका डायबिटीज मिट जाता है। बहुत ज्यादा एडवांस हो गए तो घट जाता है, लेकिन जिसको कभी ये बीमारी नहीं हुई उसको जिंदगी भर ये बीमारी नहीं होगी। तज बड़ी अच्छी चीज है, सुबह के वक्त 1/4 टीस्पून तज खाओ। तज में एक और गुण क्या है कि गर्म है, लंग्स के लिए अच्छा है। कभी इंसान को खांसी होती है तो मद के अंदर, हनी के अंदर थोड़ी तज डाल के चाटता रहे 3-4 दफा रोज, तो उसकी खांसी मिट जाएगी, सर्दी मिट जाएगी। ये जो तज है लिवर के लिए भी अच्छी है। हम लोग पिलाव बनाते हैं तो उसमें तज की लकड़ी डालते हैं, कितनी अच्छी चीज आई है, मगर सुबह के वक्त क्वार्टर टीस्पून तज अपनी हैबिट बनाओ, बहुत फायदे होंगे। फिर एक और बड़ी अच्छी चीज है हल्दी, टर्मरिक, गुजराती में हरदर। हम लोग जो एशियंस हैं अपने सालन में हल्दी रोज डालते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। हल्दी आज 30 बरस से जापानीज साइंटिस्ट इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे, उसका रिजल्ट कितना अच्छा आया कि कैंसर की दवा है हल्दी। हल्दी जो है वो मोस्ट एंटीसेप्टिक है, बदन में कहीं भी अंदर सेप्टिक हो गए तो हल्दी खाने से वो सेप्टिक दूर होता है। हल्दी सचमुच हर आदमी को यूज करनी चाहिए, कहीं चोट लग जावे हल्दी जला के अपने ऑयल के अंदर उसको बांध दो, वो दर्द मिटा देती है। जहां जख्म लग जावे हल्दी डाल के बंद कर दो, जख्म अच्छा हो जाएगा। हल्दी जो है लंग्स के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है सांस लेने का, उसको क्लीन रखती है। रात को सोने से एक घंटा पहले या आधा घंटा पहले दूध को बॉईल करके 5 चम्मच क्वार्टर टीस्पून हल्दी डाल के, पहले दूध बॉईल होना चाहिए, सिर्फ गर्म करके नहीं, क्योंकि दूध को जब तक बॉईल नहीं करोगे उसके अंदर जो लैक्टिक एसिड है वो नहीं निकलता। दूध को बॉईल करके क्वार्टर टीस्पून हल्दी डालो, 5 चम्मच क्वार्टर टीस्पून हनी डालो और इसको रोज पिया करो, नींद की तकलीफ कभी नहीं होगी। नींद को इंड्यूस करने वाली चीज है। दूसरी चीज ये है कि हल्दी एंटीसेप्टिक होने की वजह से रात को उसको टाइम मिलता है, सारे बदन में सर्कुलेशन में आती है तो हमारे बदन के अंदर टॉक्सिक मैटर को दूर करती है, खांसी नहीं होती, लंग्स अच्छे रहते हैं, दम की बीमारी नहीं हुए। सिल्वर का कप, सिल्वर कप चांदी का, अगर चांदी नहीं मिलती है तो पायरेक्स का जो ग्लास होता है ना वो आग के ऊपर रह सकता है, कोई मेटल नहीं होनी चाहिए, लेकिन सिल्वर हो गए तो नाइट्रिक एसिड होता है उसमें। सिल्वर के कप में एक कप पानी डाल के और साथ ही 1 टीस्पून हल्दी डाल के उसको बॉईल करो, बॉईल हो जावे रख दो उसको, 12 घंटे के बाद हल्दी नीचे बैठ जाएगी और कपड़ा लेके मलमल जैसा फाइन कपड़ा लेके उसमें उसको फिल्टर करो और कलर वाली बोतल के अंदर रखो। इसमें से रोज एक ड्रॉप आंखों में डालने से आस्ते आस्ते 6-7 महीने के अंदर कैटरेक्ट कम हो जाएगा, मिट जाएगा, नजर तेज होगी, आंखें साफ रहेगी, आंखों की बीमारियां नहीं होंगी। कई लोग हैं खासतौर पर बड़ी उम्र के अंदर आंखों में पानी आ जाता है, ऐसी चूची बन जाती है, हल्दी उसकी दवा है। हल्दी से नजर तेज और साफ होती है, हल्दी खाने में भी अच्छी लगाने में भी अच्छी है, पानी के अंदर नहीं लेकिन तेल के अंदर। हल्दी को पहले तेल को जला लेना चाहिए, हल्दी उसके अंदर डाल के तेल को गर्म करो कि हल्दी जल जाए। जल जाने का मतलब यह है कि हल्दी काली पड़ जाती है। इस तेल को फिल्टर करके रखो और पर्टिकुलरली बेबीज को हर वीक या 15-15 दिन से इस तेल की मालिश करो तो बेबीज को ये चमड़ी का बीमारी कभी नहीं होगी। और वैसे भी ये तेल जो है इसकी मालिश किया करो, बेस्ट चीज है ये। इसमें बहुत गुण है, चमड़ी अच्छी और क्लीन रहती है, और कुछ भी इसमें खराबी हो तो ठीक हो जाता है। बड़ी उम्र के अगर आदमी नहाना कम करते हैं, कपड़े जल्दी से नहीं बदलते, चमड़ी के रोग होते हैं बूढ़े आदमियों को, और उसमें ड्राइनेस पैदा हो जाती है, कभी कभी एक्जिमा हो जाता है, हल्दी का ये तेल इन सब चीजों की दवा है। ये सब चीजें हमारे किचन में है। एक और चीज है हमारे किचन के अंदर, जीरा। जीरा जो है वो हम पिलाव में डालते हैं। बाज ऐसे बच्चे होते हैं अच्छी तरह खाना नहीं खाते, क्योंकि उनकी जो डाइजेशन खराब है, थोड़ा जीरा लेके उसको थोड़ा थोड़ा कूटो, फाइन पाउडर नहीं बनाओ, जरा कूट के 5 चम्मच जीरा, 1 कप पानी बॉईल करो और स्लाइट नमक डाल के बच्चे को पिलाओ खाना खाने से थोड़ा पहले, तो इंशाल्लाह 10-15 दिन में उसकी भूख खुल जाएगी, अच्छी तरह खाना हजम होगा। कभी बहुत ज्यादा खाया गया, कभी कभी ऐसा हो जाता है वह आदमी ओवर ईटिंग करता है, तो अब सुख होता है उसको, इधर भारी भारी होता है। तो इस तरह ये जो जीरे वाला पानी है, पीने से खाना डाउन हो जाता है, सेटल हो जाता है। जीरे में खुशबू है, जीरा लिवर के लिए अच्छा है। मुंह में से पास आती है उसके लिए भी जीरा अच्छा है। ये जो गिरियाली है आंखों के लिए अच्छी है, डाइजेशन के लिए अच्छी है, और मुंह को भी क्लीन और साफ करती है। वरियाली ठंडी है इसलिए लिवर को बहुत फायदा होता है, क्योंकि लिवर में हर वक्त गर्मी ही गर्मी रहती है। कभी लिवर की गर्मी बढ़ जाती है तो जॉन्डिस हो जाता है, उसके लिए भी ये जो वरियाली है काम आती है। हमारे किचन में जायफल होता है, जायफल बहुत अच्छी चीज है, गर्म है, बड़ी उम्र में शरीर की गर्मी घट जाती है, तो उसके लिए हमारे पास ये पता एक सेंट है कॉइन्स में, एक हाथ से सेंट पकड़ के इसके ऊपर जितना जायफल आवे इतना गर्म दूध में, यानी दूध बॉईल किया हुए उसमें जायफल डाल के थोड़ा हनी डाल के 1-8 दिन तक पिए, उसकी सर्दी भी मिट जावे, खांसी मिट जावे, लंग्स क्लीन होवे। और जायफल में एक और गुण है कि नींद लाता है। हमारे किचन के अंदर एक और चीज है, ये जो चीज है वो बड़ी कॉमन है, अच्छी भी है बुरी भी है, और ये चीज है धनिया, सूखा धनिया। सूखा धनिया पाउडर करके हम इसको मसाले में डालते हैं, लेकिन सूखा धनिया भी अच्छा है, लीला धनिया, इसको सिलेंट क्या कहते हैं, कोथमीर। ये कोथमीर हर रोज खाया करो, खून को साफ करता है, मुंह की बू को दूर करता है, हजम शक्ति के लिए अच्छा है, डाइजेशन करता है। सूखा धनिया जो है उसमें भी ये गुण है, उसका पाउडर बना के साग में डाल के खाया करो तो वो भी डाइजेशन के लिए अच्छा है। हमारे इन तमाम चीजों के अंदर जो मैंने आपको बयान किए हैं मोस्टली यही चीजें हैं, लेकिन अब कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो मसाले में बगैर इनके काम नहीं आता। एक चीज है लविंग। लविंग आला चीज है। पीरों ने गिलान में लविंग को याद किया है कि वो मोमन जो लविंग जैसे हैं वो मौला के बंदे हैं। लविंग कभी सड़ता नहीं और लविंग डालने से कीड़ा मकोड़ा जर्म्स नहीं आते हैं। लविंग का तेल एक टीपा एक बूंद कॉटन में लेके नाक में रखने से उसकी सांस अंदर जाती है तो सर्दी मिटती है। लविंग चबाने से जरा उस तीखा होता है, लविंग चबाने से गला साफ होता है। मैं बहुत दफा आवाज करते करते मुंह में एक लविंग पड़ा होता है, पानी पीने की आदत जरूरत नहीं होती। एक सुई लेके लविंग को छेदो, सुई के साथ लग जावे। अब सुई पकड़ के माचिस जलाओ और लविंग को जलाओ, लविंग जल जाएगा। और फिर ये जो जलने के बाद इसकी जो ऐश है, एक स्पून में डाल के थोड़ा मध डाल के चटाने से खांसी दूर होती है। खासतौर पे बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, खांसी दूर होती है, गला साफ होता है। और ये एंटीसेप्टिक है, जर्म्स मारता है, लंग्स के लिए भी अच्छा है। लविंग जो है कीमती चीज है, इसका यूज रखो। बड़ी उम्र के अंदर मुंह में एक लविंग पड़ा होगा सर्दी नहीं होगी, मगर याद रखना एक जगह इसको रहने दोगे तो इधर जख्म हो जाएगा, चांदी पड़ेगी, उसको फिराते रहो। लेकिन लविंग के ऊपर वो जो टोपी है ना उसकी राउंड बॉल वो फेंक दो, वो नहीं खाना, उसको निकाल डालो। अब ये एक और चीज है एलची। एलची ठंडी है, हम उसको उर्दू में इलायची कहते हैं। इलायची ठंडी है, उसका छिलका निकाल के अंदर के जो बीज है, खाना खाने के बाद अगर उसको चबाया जाए हजम के लिए अच्छा है, गर्मी को कम करता है। बहुत प्यास लगती होवे तो एलची खाने से प्यास मिटती है। एलची हार्ट की दवा है। एक एलची बड़े साइज की या दो छोटे साइज की, इनके बी निकाल के खाना खाने के बाद चबाते रहो, अच्छी तरह से चबाओ, हार्ट मजबूत होता है, हार्ट के मसल्स को फायदा मिलता है। और एलची में गले के लिए भी एलची अच्छी है। हम अपने खाने में खासतौर पर जो मीठी जो चीजें बनाते हैं, सेवियां बनाते हैं, उसमें एलची डालते हैं। एलची का यूज होना चाहिए, एक तो एलची रोज खानी चाहिए, लेकिन उसका छिलका नहीं खाना, उसकी जो स्किन है वो फेंक देनी चाहिए। कभी कभी मेरे पास कोई माँ आती है, मिशनरी बापा छोकरो बहु गुस्से वालों है, घड़ी घड़ी बिगड़ी भी देता हूँ, तो उसको कहता हूँ इसको एलची खिलाओ, मगर छिलते के साथ। छिलते के साथ एलची खिलाने से उसी दिन तो फायदा नहीं होगा, लेकिन दो तीन महीने के बाद थोड़ा ठंडा हो जाएगा, गुस्सा घट जाएगा। कैसी अच्छी चीजें खुदा ने बनाई है। लेकिन एलची बड़ी भी होती है, इतनी बड़ी इसको एलचो कहते हैं, वो ताकत देने वाली चीज है। एक बड़ी साइज का जो एलचो है उसके छिलका निकाल के उसके, मगर पहले उसको बॉयल करना चाहिए, उसके जो बीज हैं वो कूट के हम फिरने के ऊपर, खीर के ऊपर, हलवे के ऊपर डालने से बड़ी ताकतवर चीज है, ताकत आती है बदन की। तो ये वो चीजें हैं कि जो हमारे किचन में है, इनके यूज से हमें फायदा होता है। बड़ी उम्र के जो लोग हैं उनको मैं एक और सजेशन देता हूं, केसर सैफरॉन। सैफरन के 8-10 पत्ते हैं, क्योंकि सैफरन के छोटे छोटे पांदड़े होते हैं, ये जो लीव्स हैं उसमें से 8-10 लेके दूध को बॉईल करके इसको बाद में उसमें डालो और उसको डिसॉल्व होने दो, दूध का रंग पीला हो जाएगा। ये दूध पीने से ब्रेन के लिए बहुत अच्छा, याद शक्ति बढ़ती है, नजर पावरफुल होती है और आदमी को जनरल हेल्थ मिलती है, टॉनिक है, बॉडी गर्म रहती है। लेकिन वो लोग के जिनको हाई प्रेशर है उनके लिए ये चीज अच्छी नहीं, क्योंकि इसके पीने से हाई प्रेशर बढ़ता है। मगर जो पहले रोज 2 केले खाने की आदत है तो कोई हरकत नहीं। गर्मी के अंदर सैफरन मत लेना, सर्दी के 4 महीनों में अगर आप रोज उसको अठवाड़िए में 1 या 2 दिन पियो, बॉडी में बहुत फायदा रहेगा, बॉडी में एक्टिविटी रहेगी, लेजीनेस दूर होगी। लेजी आदमियों के लिए ये सैफरन अच्छा है। अभी एक चीज और है, खशखाश, पॉपी सीड्स, छोटे छोटे बीज होते हैं, कभी कभी आदमी को डिसेंट्री हो जाती है, घड़ी घड़ी वॉशरूम में जाता है, पतले पखाने आते हैं उसको, तो ये जो खसखस है, आधी चमची खसखस कच्ची मुंह में डाल के चबाता रहे और फिर थोड़ी देर के बाद पानी से उतार ले तो उसको थोड़ी कब्जियात हो जाएगी और डिसेंट्री बंद हो जाएगी। खसखस ठंडी है, किसी आदमी को बीमारी आती है, सिर दुखता है, किसी को आधा सिर दुखता है, किसी को गर्मी की वजह से सिर दुखता है, तो खसखस को पीस के उसका लेप किया जाए, फायदा होता है। खसखस में एक अच्छा गुण यह है कि ब्रेन पावर बढ़ती है, उसको दिमाग ताजा होता है। खसखस कब्जियात करती है, इसके लिए ध्यान रखना चाहिए कि बहुत न खाई जाए, मगर अच्छी चीज है, याद शक्ति के लिए अच्छी है। इसलिए खानों के अंदर थोड़ी सी खसखस खानी चाहिए। वो लोग के जो स्टूडेंट हैं उनको याद करना होता है, स्कूल में जाते हैं, उनके ब्रेन पावर के लिए अच्छी चीज है। 4 से 5 बादाम रोज खाया करो, रात को पानी में डाल दो और दिन को उसका छिलका निकाल के खीसे में रखो, 1-1 बादाम थोड़ी थोड़ी देर के बाद खूब चबाओ, मेमोरी अच्छी होगी, आंखों की नजर तेज होगी, ब्रेन पावर अच्छी होगी, बॉडी की ताकत बढ़ेगी। 4 से 5 बादाम रोज खाओ, अल्जाइमर नहीं होगा। 2 अखरोट खाओ, वो भी ब्रेन के लिए, अल्जाइमर के लिए अच्छे हैं। ब्रेन में जो खुदा ताला ने सेल्स बनाए हैं, सारे बदन को कंट्रोल करने की शक्ति नर्वस सिस्टम में से मिलती है, तो बादाम और अखरोट खास तौर पे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन एक आदत जरूर रखना कि तमाम चीजें चबा चबा के खाओ, जल्दी से नहीं उतार दें। बहुत से लोगों की हैबिट है जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, वो हमारे मुंह में ज्यादा देर नहीं रहता, इसलिए उसमें से कब्जियत होती है, डाइजेशन बिगड़ जाती है। पिस्ता हार्ट के लिए अच्छा है, 5-7 दाने पिस्ते के खाने से लंग्स अच्छे रहते हैं और पिस्ता निमोनिया की दवा है। निमोनिया लंग्स में होता है, लंग्स जाम हो जाते हैं, सांस नहीं ले सकता, उखड़े उखड़े सांस लेता है। पिस्ता, एक मुट्ठी भर पिस्ता, ऐसा आदमी कभी 7 दिन तक खाए तो उसकी इंशाल्लाह बीमारी मिट जाएगी। पिस्ता गर्म है, ध्यान से खाना चाहिए। अगर पिस्ता खाने से बहुत गर्मी चढ़ गई तो दूध पियो। दूध खुदा ताला ने फुल मील बनाया है, दूध पीने की आदत डालो। दूध पीने की आदत से उम्र लंबी होती है और हड्डे जो है मजबूत रहते हैं। बोन का मैरो और बोन की थिकनेस, दूध उसमें बहुत काम आता है। दूध फुल मील है, कम से कम एक गिलास दूध का जरूर पीना चाहिए, यानी 2 कप जितना। और दूध हमेशा बॉयल करके पियो, फिर बॉयल करके ठंडा हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन दूध को एक दफा जरूर बॉयल करो। दूध खसूसी तौर पर रात को सोने से 1 घंटा पहले पियो। दूध, और अगर सर्दी का टाइम है, विंटर है, तो उसके हम थोड़ा सा जायफल, चुप के जितना जायफल डालो, रोज पिया करो, अच्छी नींद आएगी। और उस नींद, 1 घंटे की नींद 2 घंटे भी इतना फायदा करेगी, हेल्थ के लिए भी अच्छी, हार्ट के लिए भी अच्छी है। और वो आदमी जो ये चीज ले रहे तो स्नोरिंग उसका घट जाए, बीवी बहुत खुश होगी या हस्बैंड बहुत खुश होगा। तो उसके लिए भी, अगर हस्बैंड स्नोरिंग करता है तो बीवी खुश होगी, अगर क्योंकि स्नोरिंग घट जाएगा, इससे सर्कुलेशन भी अच्छा होगा। सारा दिन 8 गिलास जितना पानी पियो, तरस लगे के ना लगे, लेकिन पानी को दवा समझ के पियो। पानी है वो क्लींजिंग फैक्टर है, हमारे बदन को क्लीन करता है। पानी की कमी की वजह से किडनी खराब होते हैं, पानी की कमी की वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड जो मर्दों में है औरतों में नहीं है उसकी तकलीफ होती है। 40 से 50 बरस की उम्र में कई लोगों को प्रोस्टेट की तकलीफ होती है, घड़ी घड़ी पेशाब करने जाता है। लेकिन घड़ी घड़ी पेशाब सिर्फ प्रोस्टेट का कारण नहीं, अगर ब्लैडर में ठंडी है तो भी ज्यादा पेशाब आता है, और अगर बॉडी के अंदर शुगर बढ़ गई है तो भी पेशाब ज्यादा आता है। लेकिन प्रोस्टेट मर्दों के अंदर आज बहुत बड़ी एक डिजीज है, और इसके ऑपरेशन के बगैर दूसरा कोई रास्ता नहीं। अगर प्रोस्टेट बिगड़ गया तो इसका ऑपरेशन के बगैर और कोई रास्ता नहीं, और बहुत सी मौतें प्रोस्टेट की वजह से होती है। प्रोस्टेट में कैंसर हो जाता है और आदमी मर जाता है। तो खासतौर पर मर्दों को कहता हूं कि अपनी डाइट के अंदर देखो, खुदा ने कैसी कैसी चीजें बनाई है। एक इतना टोमेटो, टोमेटो को उसके टुकड़े काट के माइक्रोवेव में रख दो 2 मिनट के ऊपर की स्किन निकल जाए, और सारा रखो तो भी चले, लेकिन एक टोमेटो इस बड़ी साइज का रोज खाया करो, ये प्रोस्टेट की दवा है। और इससे प्रोस्टेट नॉर्मल रहता है। अगर प्रोस्टेट बिगड़ गया है तो 100 SAW पॉलमेटो, PALMATO, एक हर्बल दवा है, उसके कैप्सूल्स मिलते हैं, 100 पॉलमेटो, ये हेल्थ स्टोर में से मिलेगी, ये प्रोस्टेट की दवा है। टोमेटो भी खाए जाए और 100 पॉलमेटो भी खाया जाए तो इंशाल्लाह आदमी 2-1 बरस में बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन मैं इंसिस्ट करता हूं, भार पूर्वक कहता हूं, तरस लगे ना लगे पानी के साथ 8 गिलास रोज पियो।
मेहरबानी करो अपने ऊपर, दया करो अपने ऊपर, ठंडी चीजें न खाओ। ठंडी का मतलब फ्रिज में से निकली हुई, बर्फ वाली चीजें मत खाओ। रूम टेम्परेचर पे पड़ी हुई चीजें हमें, इसी तरह से गरम गरम चाय, जीभ जले ऐसी चाय मत पियो। रसूल पाक फरमाते हैं कि गरम खाना खाने से तुम्हें बीमारियां होंगी। तो किसी ने पूछा, या मौला या नबी, कितना गर्म हो गए? फरमाया, उंगली डालो, अगर तेरी उंगली उसको सहन कर लेती है तो खाओ। चाय के कप में मैं ऐसा नहीं करता कि उंगली डालो, लेकिन ठहरो, चाय उसी वक्त गरम गरम मत पियो, थोड़ी देर रखो उसको, पीने के लायक हुए, गला न जले, इस तरह खाओ। बहुत गर्म खाने से नबी कहते हैं शरीर को नुकसान होता है, कैंसर होता है, सेल्स जल जाते हैं। सबसे पहले जीभ को तकलीफ होती है, गले को तकलीफ होती है। बर्फ वाली चीजें नहीं खाना। लेकिन मैं अपनी एक बुराई को जाहिर करता हूं, बुराई तो नहीं है, आइसक्रीम खाता हूं, मगर खाना खाने के बाद खाली पेट आइसक्रीम मत खाओ। और आइसक्रीम इस तरह खाओ कि दांत को न लगे, छोटे छोटे पोर्शन जीभ के ऊपर रख के उसको डिसॉल्व करो, इस तरह आइसक्रीम खाओ। आइसक्रीम अच्छी चीज है। खाना खाने के बाद एक स्कूप जितना आइसक्रीम खाओ, ताकत वाली चीज है। मगर वो लोग जिनको डायबिटीज है, वो कभी आइसक्रीम के ऊपर सिनेमन पाउडर डाल के खावे तो उसको फायदा होगा। वैसे भी नॉर्मली आइसक्रीम में, अगर आप ये कभी पुडिंग या आइसक्रीम में थोड़ी सिनेमन पाउडर डाल के खाओ, डाइजेशन के लिए अच्छा, गले के लिए अच्छा, डायबिटीज रिमूव होता है। तो ठंडी चीजें मत खाओ। लेकिन एक और बड़ी अच्छी चीज है, और वो है दही, योगर्ट। योगर्ट खुदा ताला ने बहुत बीमारियों की दवा बनाई है। योगर्ट घर में बनाओ, ये जो स्टोर्स में मिलता है उसके अंदर जिलेटिन डालते हैं। कुछ ऐसे दही मिलते हैं स्टोर में कि जिसके अंदर वो लोग मकई का आटा मिक्स करते हैं, कॉर्नफ्लावर डालते हैं। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि दही घर में बनाओ। दही जो घर में बनाते हो 2% या स्किम मिल्क का, क्योंकि जो सीनियर्स हैं उनको फुल क्रीम मिल्क नहीं पीना चाहिए। 2% से ज्यादा मत होना चाहिए, 1% बहुत अच्छा है। और जिसको फैट की, कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ है, उसको स्किम मिल्क पीना चाहिए। तो 2% दूध को गर्म करके उसमें स्किम मिल्क पाउडर, स्किम मिल्क पाउडर के 2 चमचे डाल दो, दूध घटा हो जाएगा। अब उसके अंदर मेहरबान डाल के इसका दही बनाओ, एक बाउल जितना दही रोज खाओ। और सुबह के वक्त जब आप ये खाओ तो उसमें थोड़ा सिनेमन पाउडर डाल दो। विटामिक्स या दूसरे सीरियल्स हैं वो दही में डाल के खाओ। मगर मेरा एक और सजेशन है कि दही का बॉयल लेके 3 कड़ी लहसुन लो। सोने के भाव से अगर लहसुन मिले तो खाओ, यानी लहसुन इतना महंगा हो जाए कि गोल्ड की कीमत का मिले तो लहसुन खाओ। एक लहसुन की कनी $1 में मिले तो लेके खाओ। लहसुन बहुत आला चीज है। सिर से पांव तक की बीमारियों की दवा है। लहसुन की दो या तीन कनी छोटे छोटे टुकड़े करके दही में डालो, थोड़ा सिनेमन पाउडर डालो, एक विटामिक्स या दूसरा कोई सीरियल जो आपको खाना है इसमें डाल के मिक्स करके खाने डाल के खा सकते हो, मध डाल के खा सकते हो, यह सीरियल आपको बहुत काम आएगा। अच्छी सेहत के लिए, अच्छी तंदुरुस्ती के लिए ये बाउल दही वाला, लहसुन वाला, मध वाला बहुत आला चीज है। बीमारियां मिट जाएगी, बदन में ताकत आएगी। बड़ी उम्र में क्या होता है कि 60-65 बरस के बाद आदमी की बॉडी का जो हीट है, बदन की गर्मी, वो घट जाती है, ठंडी ज्यादा लगती है और आदमी आस्ते आस्ते वीक हो जाता है। और इस हालत के अंदर जो जॉइंट्स हैं हमारे बॉडी के, घुटने, एंकल्स, हिप्स, हमारे हाथ, शोल्डर्स, जितने भी जॉइंट्स हैं, ये जॉइंट्स वीक हो जाते हैं। आर्थराइटिस का कारण ये है कि बॉडी के अंदर ठंडक ज्यादा रही और ठंडक ज्यादा होने के कारण से एसिडिटी बढ़ गई। एसिडिटी के कारण से हमारी बॉडी के अंदर जो लिक्विडिटी है, खुदा ताला ने जॉइंट्स के अंदर जो ऑयल रखा है ल्यूब्रिकेशन, वो हार्ड हो जाती है। इसका नाम आर्थराइटिस। अगर हम दो या तीन कनी लहसुन हर रोज खाएं, बड़ी साइज के, ये एलची की साइज का लहसुन नहीं खाना, बड़ी साइज के दो से तीन लहसुन के टुकड़े रोज खाओ, इंशाल्लाह आर्थराइटिस नहीं होगी। और आर्थराइटिस की ये दवा है, जिनको आर्थराइटिस हो चुकी उनको चार कनी लहसुन की बड़े साइज की कूट के, जो तैयार मिलता है लहसुन उसमें विनेगर डालते हैं, वो नहीं लेना, लेकिन घर में उसको जरा कूट डालो और दही में डालो, थोड़ा सा मध डालो, सिनेमन पाउडर डालो, और फिर सीरियल डालना तो ठीक, नहीं तो यूं ही खाओ उसको। ये आर्थराइटिस की दवा है, मगर इसको 6 से 12 महीने खाना चाहिए। ठंडी चीजों का परहेज करें। अब मैं एक और आपको नुस्खा बताता हूं कि लगभग हर बीमारी उससे दूर होती है। एक कप लहसुन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के वो कप भरो और ब्लेंडर में डाल दो। अब यही कप हनी से भरो, मध से, सारा कप इसको ब्लेंडर में डाल दो। अब इसमें एप्पल साइडर विनेगर कप भरो और ये विनेगर डालने से जो कप के अंदर जो हनी है उसको जरा उंगली से मिक्स कर डालो और ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करो। अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए, एक बड़ी बोतल में इसको उतार लो और वो बोतल ऐसी हो गई कि टाइट रहने। इस को 3 दिन रखो और उसके बाद यूज करो। 1 टीस्पून इसमें से निकालो, 1 टीस्पून एक गिलास वार्म वाटर में, गर्म पानी में इसको मिक्स करो, रोज पिया करो, लगभग हर बीमारी इससे मिट जाएगी। लेकिन ये लॉन्ग प्रोसेस है, 8-10 दिन पी के छोड़ दो नहीं, कम से कम 6 महीने पियो, रोज पिया करो, 1 टीस्पून पानी में डाल के इसको पियो, टेंशन मिटेगा, आर्थराइटिस मिटेगी, अस्थमा मिटेगा, बदन में ताकत रहेगी, कोलेस्ट्रॉल मिट जाएगी, हार्ट मजबूत होगा, लिवर ताकत वाला हो जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड की तकलीफ मिट जाएगी। ये यूनिवर्सल दवा है, ये आयुर्वेदिक दवा है और आपको उसमें बहुत फायदे रहेंगे। लेकिन साथ साथ परहेजी रखनी चाहिए, नो सॉल्ट नो ऑयल, ऑयल बंद करो। कभी कभी मैंने कहा मैं एक वीक में कभी खा लिया, ओके, लेकिन अपनी बॉडी को साफ रखो, हर रोज नहाओ। नहाना खुद एक दवा है। हमारी चमड़ी में, हमारी स्किन में, फिर माँ बाप कहते हैं कि 3.5 करोड़ यानी आउट मीन्स 3.5, 36 मिलियन हमारी स्किन में पोर्स है, 3.5 करोड़। ये जो पोर्स है माइक्रोस्कोपिक होल है, हमारी स्किन सांस लेती है, ऑक्सीजन अंदर जाती है और अंदर के कार्बन बाहर निकलता है। तो स्किन क्लीन रहे हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। स्किन को क्लीन रखने के लिए हर रोज वार्म वाटर से नहाना चाहिए और ऑर्डिनरी सोप यूज ना करो। मैं मोस्टली नीम सोप, इंडिया से आता है लिंबड़े का साबुन, नीम NEEM, ये लिंबड़े का सोप स्किन के लिए अच्छा है। और दूसरा सोप जो मैं यूज करता हूँ वो है प्योर सोप, ग्लिसरीन वाला। इसके अलावा दूसरा मैं कोई सोप यूज नहीं करता। और मोला के रहम से कभी मुझे स्किन की डिजीज नहीं हुई। लेकिन साथ एक और भी है कि बड़ी उम्र में 60 वर्ष के बाद महीने दो महीने एक दफा चटाई बिछा के या बड़ा टॉवल बिछा के अपने बदन पे ऑलिव ऑयल की मालिश करो। ऑलिव ऑयल वर्जिन आना चाहिए। मालिश करके सारे बदन पे मालिश करो और 20 मिनट तक वेट करो, फिर नहा लो। इतना आपको दिल खुश होगा, बॉडी लाइट हो जाएगी, स्किन अच्छी रहेगी और इसका असर हड्डियों पे पड़ेगा, हड्डियां मजबूत होंगी। ये थोड़ी सी चीजें हैं जो मैंने अच्छी हेल्थ के लिए बताएं। और अच्छी हेल्थ है वो इबादत है, इसलिए कि हमारी बॉडी मौला ने दी है। अब मैं एक और चीज कहनी चाहता हूं और वो है हमारी रूहानी जिंदगी। वहां मैं बोल के आया हूं, यहां भी बोलना चाहता हूं। कोई 65 बरस का, कोई 70 बरस का, कोई 80 बरस का, ए मोमिनो, जितने बरस हम जी चुके हैं इतने बरस बाकी नहीं है। कोई 80 बरस का है तो अभी दूसरे 80 बरस नहीं है। बरस हो गए, 5 बरस हो गए, 10 बरस हो गए, हमारी जिंदगी एंड के ऊपर आई है और हमें एक दिन मरना है। अपनी मौत को याद रखो और इस बात की तैयारी करो कि मौला के पास मुझे जाना है। जिंदगी के अंदर जितनी हमारी इस वक्त एज है, इतनी जिंदगी पास्ट में जो निकल गई है, हमने बड़ी भूलें की हैं, बहुत से गुनाह किए हैं, कई ऐसी चीजें हमारे मजहब की जो हमने नहीं, दुआ भूल गए हैं, इबादत भूल गए हैं, कभी जमात खाने गए कभी नहीं गए, ऐसी बहुत सी चीजें हमारी पास्ट लाइफ में यानी हमारी उम्र में हो चुकी हैं। अब हमें मौका है हमें कमाने की फिक्र नहीं, घर बैठे हुए हमारे बाप माँ की तरह गवर्नमेंट हमको चेक भेज देती है। हमने कुछ नहीं किया इस मुल्क के लिए, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट हमको पैसे दे रही है। हज़रत इमाम ने हमें ऐसे अच्छे देश में भेजा है। हमारे में से बहुत से ऐसे लोग हैं, अगर वो अफ्रीका या इंडिया पाकिस्तान में उधर ही रहते, यहाँ नहीं आते, तो अब तक मर चुके होते। मगर यहाँ आके हमारी तंदुरुस्ती भी थोड़ी ठीक हो गई। लेकिन इस उम्र में आके अगर हमको अपनी आखिरत का ख्याल नहीं है, हमें मौत याद नहीं है, हमें इमाम के पास जाके हिसाब किताब देना है ये याद नहीं है, तो वो आदमी रियली जानवर जैसा है। मरना है, लाजिम मरना है, मन होवे कि ना होवे, लेकिन मरना है। राजी खुशी से नहीं मरेंगे, जबरदस्ती से मरेंगे, मगर मरना है। वो छोड़ने वाला नहीं। तो इस मौत का हमने क्या बंदोबस्त किया है? जब हम मुसाफरी करते हैं तो दो चार दिन पहले पेट तैयार करते हैं, कपड़े रखते हैं, दूसरी चीजें रखते हैं। क्या है, सफर पे जाना है तो हमें पेट तैयार करनी चाहिए। सूट के तैयार करो, अभी से तैयार करो, और जब भी एरोप्लेन आवे तो बैठ जाओ। इसके लिए एक जरूरी चीज है, तस्बीहां ज्यादा निकालो, इबादत ज्यादा करो। मैं वहां एक चीज अपनी लाइफ में से बोल के आया हूं। 40 बरस की मेरी उम्र थी, नहीं आज से 40 बरस पहले 45 ईयर्स की एज में एक दिन बैठे बैठे मुझे ख्याल आया, 7 बरस की उम्र से दुआ पढ़ता हूं, लेकिन 7 बरस से पहले, जन्म से लेके 7 बरस की उम्र तक छोटा था, दुआ पढ़ता था मगर बहुत दफा नहीं पढ़ता था। तो मैंने मन में तय किया कि आज से मैं 4 दुआएं पढ़ूंगा। हम 3 दुआ पढ़ते हैं ना, मैंने डिसाइड किया कि 1 दुआ एक्स्ट्रा पढ़ूंगा। और सेठ को कहा कि देख, वो पैदाइश से जन्म से लेके 7 बरस की उम्र है, या उसके बाद भी मेरी कोई दुआ भूल गई है, या उस उम्र में मैंने जो दुआएं नहीं पढ़ी, या मौला रोज की 3 दुआ का हिसाब करने के लिए मैं 1 दुआ एक्स्ट्रा पढ़ूंगा। हर 40 बरस से मैं 1 दुआ एक्स्ट्रा पढ़ता हूं। कुछ एक्स्ट्रा तस्बीहां निकालो। सलवात की तस्बीह बहुत आला दर्जे की इबादत है। एक तस्बीह सुबह, एक दोपहर को, एक रात को, कम से कम 3 या 5 तस्बीहां सलवात की रोज निकाला करो। लेकिन 101 दाने की तस्बीह, हमारी इस्माइली तस्बीह, वो छोटी तस्बीह जो खीसे में वो फेंक दो, वो हमारी तस्बीह नहीं है। हमारी तस्बीह 101 दाने की है। यह हमारी तस्बीहां इमाम के फरमान से कुछ ऐसी मंडलियां हैं कि जिसमें हजरत इमाम ने 33 दाने की तस्बीहों का हुक्म किया है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह बहुत दफा 40 दाने फरमाया करते थे। मौला के फरमान में, सुल्तान मोहम्मद शाह के एक फरमान में है कि तुम लोग बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हें इस सतपंथ में जन्म मिला, इसलिए तुम इस जमात के लिए कि जिस जमात में तुम्हें जन्म मिला है उस जमात के लिए थैंक यू की एक तस्बीह निकालो। 40 दाने पीर शाह के, 40 दाने पीर शाह के निकालो, और इसका सवाब जमात को दो। या मौला, इस जमात में तूने मुझे पैदा किया तो ये 40 दाने में जमात के लिए निकालता, इसमें हमारा भी फायदा है, जमात को भी फायदा मिलता है। मौला के फरमान पढ़ते रहो। जो गुजराती जानते हैं उनको मैं सजेस्ट करता हूँ, मौला मैं इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की जो किताब है ना, कलाम इमाम मुबीन, 2 भाग हैं, इसको पढ़ा करो। इसमें बड़ी नसीहत है दुनिया की भी दीन की भी। ये दो किताबें लगभग 750 हैं इसके, हमारे सारे इस्माइली मजहब का तत्व एसेंस निकाल के उसमें है। बड़ी अच्छी किताबें हैं। सुल्तान मोहम्मद शाह की यह फरमान पढ़ो और हज़रत इमाम के भी फरमान पढ़ा करो। दिन के वक्त बैठ के थोड़ी इबादत भी करो, जैसे कि हज़रत इमाम ने 5-6 जगह यह फरमान किया है कि सारा दिन में कभी कभी या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, और या अली, और या मोहम्मद ये कर तस्मियां निकाला करो। या अल्लाह सौदाने की तस्मी हो गए, या अली की या मोहम्मद की, ये इबादत है। और इन तस्मियों में या और कोई तस्मियां जब आप निकालो तो मैं एक बात कहता हूं, दुआएं मत मांगो या मौला तू ये करते या मौला तू ये करते। ये तस्मियां निकाल के उसकी कीमत मत मांगो, यू ही तस्मियां निकालो महज उसकी मोहब्बत के लिए, उसके वरदान के लिए, कोई चीज मांगो मत। हाँ अगर कुछ मांगना ही है, कोई ऐसी तकलीफ आ गई और आपको मांगने की जरूरत पड़ी, तो दो तस्मियां सलवात की निकाल के सजदे में मांगो, या मौला ये तकलीफ आ गई है। ये प्रेस्क्रिप्शन इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने दिया है कि अगर तुम्हें कोई तकलीफ है तो सुबह के वक्त दो तस्मियां सलवात की निकाल के ये दुआ मांगो। और इसके अलावा जितनी भी तस्मियां निकालो उसके बाद दुआ मत मांगो, यानी तो कबूल कर बस, इससे रूहानियत बढ़ेगी। जमात खाने नहीं जा सकते सुबह को तो जरूर 4 बजे 4:45 बजे उठ के हाथ मुंह धो के वॉशरूम में से निकल के बन सके जमीन पे बैठ के आप इबादत करो। बैतुल ख्याल की इबादत हमारे लिए बहुत जरूरी है। जिस तरह खाने पीने से हमें हमें बदन की तंदुरुस्ती मिलती है, इसी तरह से हमारी रूहानी साइड जो है उसके लिए इबादत जरूरी है। वो लोग के जिनके पास बोल नहीं है, जो यहाँ तो कोई नहीं ऐसा यंगस्टर्स में है कि जिनके पास बोल नहीं, उनके लिए भी इमाम कहते हैं याली याली की तस्बीह निकालो, यानी याली याली को बोल लिया करो। मगर हमारे सबके पास, लगभग सबके पास बोल है, इस बोल को रिवाइव करो, याद करो। 3 और 5 बजे के दरमियान, 3 और 5 इसलिए कहता हूं कि कोई वजह से आदमी 1 घंटा नहीं बैठ सकता तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें बैठे रहे। एडवांस में भी थोड़ी इबादत हो सकती है, मगर 4 और 5 बजे के दरमियान जरूर उठो। हमारे ऊपर ये फर्ज डाला गया, ड्यूटी डाली गई है। 4 और 5 बजे के दरमियान कभी इबादत करते करते झोंका आ गया, सो भी गए, कोई बात नहीं, बने इतना सुबह तक होशियार रखो, लेकिन इबादत करो। दिन के वक्त अपने बोल को याद कर सकते हैं चलते चलते, खाना खाते वक्त, बैठे बैठे आराम करते वक्त, लेकिन दिन के वक्त इबादत की बैठक नहीं करना। बैठक 4 और 5 के दरमियान है, मगर दिन को किसी न किसी नाम से मौला किया ताल्लुक पैदा करो, याद करते करो, अल्लाह अल्लाह करो, पीरशा पीरशा करो। पीरशा बोल है, पीरों के जमाने में ये अरबी लफ्ज पीर बाबा बोल नहीं देते थे, पीरशा का बोल देते थे, पीरशा बोल है। तो अपनी इबादत, अपनी रूहानी साइड को मजबूत करो, अच्छे ख्यालात रखो। और बड़ी उम्र के अंदर हमें दुनिया का मौज शौक लगे, ये शर्म की बात है। बसरे भर के चले जाते हैं उधर कैसिनो में। टोरंटो में ये बड़ी बीमारी है, और किसी जमात के अंदर ये चीज नहीं है, लेकिन यहाँ एक पांव कमर में है, एक साइकिल के ऊपर है, कब मिस्टर जाए पता नहीं लगे। कैसिनो में जाके अब क्या करोगे, पैसे मिलेंगे? एक औरत ने मुझे पूछा, हमको कैसिनो में से पैसे मिले तो क्या हम उसमें से दसवन दे सकते हैं? मैंने कहा शर्म करो, हराम की कमाई में से, गंदी कमाई में से इमाम को खिलाते हो। पहले तो हमें यह चीज चाहिए ही नहीं। अच्छी किताबें पढ़ो, इबादत करो, जमात की को खिदमत कर सकते हो तो करो। लगभग 10-12 साल की बात करता हूं, मैं जमात खाने में मैं एंटर हुआ। दुआ से पहले 80 बरस का, 82 बरस का एक बूढ़ा उधर पानी खा, उधर मिशनरी बापा याली बात यार बदल पानी पिलाया उसने, वो पानी पिला रहा था। मैंने कहा शाबाश, कुछ ना कुछ सेवा तो है, पानी पिला रहा था। अब तो वो गुजर गया होगा, 10-12 साल की बात है, तो कुछ ना कुछ खिदमत होनी चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो कम से कम जमात के लिए दुआ मांगा करो, दूसरे के लिए दुआ मांगा करो, किसी को अच्छी नसीहत दो। अगर हमारे में से कोई ऐसा है कि जिसने इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का सा वारा देखा है, तो कोई चीज याद आई तो उसको लिखो, लिख के तरीका बोर्ड को भेजो कि फलाने टाइम पे इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के साथ ये बना था। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह एक दफा जामनगर गए, मेला था जामनगर का, 40,000 आदमी आए। उस वक्त वारस मूसा के बेटे की शादी थी, बस मैं एक जगह बोला हूँ कि वारस मूसा की शादी थी, मूसा के नहीं उसके बेटे की शादी थी। लड्डू बनाए, गांठिया बनाए, सामने वारस को पूछा क्या जमात को क्या खिलाते हो, क्या खुदा लड्डू और गांठिया बनाए? तो माँ बाप बोला अच्छा चलो किधर है वो? छोटी सी कोठरी के अंदर बंद थे, दरवाजा खुलवाया, लड्डू मंगाए। मौला ने एक लड्डू दो हाथ से तोड़ा, थोड़ा सा मुंह में डाला, बाकी का इसमें फेंक दिया प्लेट में। फरमाया कि ये ऐसा छांट दो अंदर कोठरी के अंदर, पर्दा डालो, अंदर देखो मत। 40,000 आदमी ने लड्डू गांठ के खाए, दो बच गए, दूसरे दिन खाए, फिर भी बच गए तो उसको चार चार लड्डू भत्ते में दिए, इतनी बरकत हो गई। अभी ऐसा वाकया किसी को कभी कुछ याद है तो वो लिख के जो तरीका को देवे, ये तरीका वाले IIS में भेजते हैं। इस किस्म की चीजें लिखो, जमात को बताओ अपने एक्सपीरियंस में से, लेकिन काजीनो को छोड़ो, काजीनो हमारी चीज नहीं है। इन चीजों में अभी कोई 649 में लॉटरी लेता है, कुछ लेता है, अभी उस उम्र में क्या जरूरत है, पैसे तो मिलते हैं। हजरत इमाम हमको गवर्नमेंट की मारिफत से देता है, इसमें से 10 वक्त निकालो फिर खाओ, कुछ बच गए हैं तो किसी की मदद करो, लेकिन फैन फतूर दुनिया का अब इस उम्र में नहीं चाहिए। मौला आपको सुखी और आबाद रखे। मैं खुश हुआ आपसे मिलके, आपकी नेकों में जब पूरी बदियों बुराइयों से बचाए, फरमान बरदार बनाए, दसवां दे सुकृति बनाए, इबादत करने की ताकत दे, नेकों में जब पूरी करे। मौला आपकी दुआएं कबूल करे, आपको अपनी रहमतें और बख्शीशें दे, आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को, आपके कुटुंब कबीले का ईमान मजबूत करे, दिन और दुनिया की मौला नियामतें देवे, बख्शीश देवे, रहमत करे और अपने छत्र छाया में रखे। और जब ये आखिरी वक्त आए